नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए 95,000 करोड़ रुपए के 6 प्रस्तावों को मंजूरी दी। भारत के जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लगभग 70,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के उत्पादकता आधारित बोनस को मंजूरी दी। देश में स्नातकोत्तर और स्नातक चिकित्सा शिक्षा क्षमता के विस्तार को भी मंजूरी दी गई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 71 माओवादियों ने समर्पण किया। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची के विस्तार की मांग को लेकर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद लेह में निषेधाज्ञा लागू। सुपर टाइफून रागासा ने दक्षिण पूर्व एशिया में तबाही मचाई। ताइवान में 17 और फिलीपींस में 4 लोगों की मौत। और पुरुषों के T20 एशिया कप क्रिकेट में दुबई में भारत तथा बांग्लादेश के बीच सुपर 4 का मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज लगभग 95,000 करोड़ रुपए के 6 प्रस्तावों को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत के जहाज निर्माण और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए 69,725 करोड़ रुपए के एक व्यापक पैकेज को भी मंजूरी दी। सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि ये पैकेज घरेलू क्षमता को मजबूत करने, दीर्घकालिक वित्त पोषण में सुधार और ग्रीनफील्ड तथा ब्राउनफील्ड शिपयार्ड विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है।
तो आज करीब 70,000 करोड़ रुपीस का पैकेज अप्रूव हुआ है और ये 10 ईयर्स का प्रोग्राम है बड़ा। शिप बिल्डिंग इज द मदर ऑफ हैवी इंजीनियरिंग। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री चालू होती है तो उसके बहुत सारे मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होते हैं। इंजन मेकिंग चालू होता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को उसका बेनिफिट मिलता है, स्किलिंग के लिए बहुत काम आते हैं।
श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,91,000 रेल कर्मचारियों को 78 दिन के उत्पादकता आधारित बोनस के रूप में 1,865 करोड़ रुपए से अधिक के भुगतान की मंजूरी दे दी है।
रेलवे के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी है। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस अप्रूव किया गया आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने। 78 डेज का 1,866 करोड़ रुपीस का बोनस रेलवे के सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। 10,90,000 कर्मचारियों को इसका बेनिफिट मिलेगा।
श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने देश में स्नातकोत्तर और स्नातक चिकित्सा शिक्षा क्षमता के व्यापक विस्तार को भी मंजूरी दी है। केंद्र प्रायोजित योजना CSS के तीसरे चरण में 5,000 PG सीटें और CSS के विस्तार से 5,023 MBBS सीटें बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज बिहार में बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण को 2,192 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी है।
रेलवे का बख्तियारपुर राजगीर तिलैया लाइन है, इसकी डबलिंग का फैसला लिया गया है। आप इस प्रोजेक्ट को अगर देखें, 4 बड़े जो हमारे सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, राजगीर, नालंदा, पावापुरी, बोधगया जी मिला के ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लाइन बनती है। ये लाइन अभी तक सिंगल लाइन थी, तो सिंगल लाइन के कारण इसकी लिमिटेड कैपेसिटी थी और डबल हो जाने से इसकी कैपेसिटी सब्सटेंशियली बढ़ जाएगी।
अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। GST सुधार 22 सितंबर से लागू हो चुके हैं। नए सुधारों के अंतर्गत GST परिषद ने 5%, 12%, 18%, 28% की 4 स्तरीय संरचना को अब 5% और 18% की 2 स्तरीय संरचना में बदल दिया है। एक रिपोर्ट।
सरकार ने आम लोगों के खर्च में कमी लाने के लिए खाद्य उत्पादों पर GST दर में बड़ी कटौती की है। आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने बादाम, हेजलनट, खजूर और अंजीर जैसे सूखे मेवों पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया है। इससे लोगों में स्वस्थ खाद्य पदार्थ खाने की आदतें बढ़ेंगी और उन्हें सस्ते और बेहतर स्नैक्स मिलेंगे। इसी तरह मधुमेह मरीजों पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए विशेष आहार उत्पाद पर कर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके साथ ही घर में पोषण बेहतर हो इसके लिए सूखे मेवों पर GST की दर भी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इस फैसले का उद्देश्य सस्ती और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना, सेहतमंद आहार को सस्ता करना और बढ़िया जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रहने वाले अमन ने इस कदम का स्वागत किया है और कहा कि खाद्य पदार्थों पर टैक्स में कटौती से लोगों को सीधा फायदा होगा और इससे आम लोगों और व्यापारियों दोनों को फायदा होगा।
सरकार ने जो डिसीजन लिया है हेल्दी फूड पर से जीएसटी हटाने का, उससे बहुत खुश हूँ मैं। और इससे सिर्फ हमारा फायदा ही नहीं है बल्कि शॉपकीपर्स का ही फायदा होगा, क्योंकि अब लोग भी इन सब चीजों को ज्यादा से ज्यादा परचेज करेंगे।
नए जीएसटी सुधारों के तहत यह बदलाव देश भर में लोगों को रोजाना पोषण सुनिश्चित करने और स्वस्थ आहार खाने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन नए जीएसटी सुधार से मध्यम वर्ग के युवाओं और शहरी कामकाजी लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में मदद मिलेगी। रोहन के साथ आदित्य प्रताप, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम बता रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स के माध्यम से भारत को मीडिया और मनोरंजन का वैश्विक केंद्र बना रही है।
नरेंद्र मोदी सरकार का दृष्टिकोण भारत की रचनात्मक शक्ति का उपयोग कर उसे वैश्विक नेता बनाने का है। इस दृष्टिकोण का एक हिस्सा मुंबई में इस साल 1-4 मई तक आयोजित विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स का पहला संस्करण था। इस आयोजन का उद्देश्य दुनिया भर के रचनाकारों, स्टार्टअप्स, उद्योग जगत के नेताओं और नीति निर्माताओं को एक साथ लाकर भारत को मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना था। वेव्स का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था सकल घरेलू उत्पाद में सकारात्मक योगदान दे सकती है।
भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी आने वाले वर्षों में जीडीपी में अपना योगदान और बढ़ा सकती है। आज भारत फिल्म प्रोडक्शन, डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, फैशन और म्यूजिक का ग्लोबल हब बन रहा है। आज ग्लोबल एनिमेशन मार्केट का साइज $430 बिलियन से ज्यादा का है। अनुमान है कि अगले 10 सालों में ये डबल हो सकता है। ये भारत की एनिमेशन और ग्राफिक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा अवसर है।
रचनात्मकता, तकनीक और प्रतिभा का लाभ उठाकर एक उज्जवल भविष्य बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप वेव्स फिल्मों, ओटीटी, गेमिंग, कॉमिक्स, डिजिटल मीडिया, एआई, एवीजीसी, एक्सआर, प्रसारण और उभरती हुई प्रौद्योगिकी को एक साथ लाकर भारत के मीडिया और मनोरंजन कौशल को प्रदर्शित करता है। अभिनेता आमिर खान ने भी इस पहल की सराहना की।
मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा विचार है और ये पूरे देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक शानदार अवसर है। यह बेहतरीन पहल है जो भारत के मनोरंजन पर केंद्रित है। ये सब इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसे प्रधानमंत्री ने स्वयं शुरू किया है।
वहीं यूनेस्को के लाजारे एलोंडो ने भी नवाचार को बढ़ावा देने के भारत के दृष्टिकोण की सराहना की।
मैं भारत को पहले विश्व ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए बधाई देता हूँ। इसमें उद्योग जगत के प्रमुखों, हितधारकों को एक साथ लाया गया है। इसके लिए मैं भारत की सराहना भी करता हूँ।
Within the media and entertainment sector.
विविध चुनौतियों और सहयोग के लिए एक मंच के रूप में वेव्स ने भारत के मीडिया और मनोरंजन के भविष्य पर स्थायी प्रभाव डाला है। समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में आज 21 महिलाओं सहित 71 माओवादियों ने सुरक्षा बलों के सामने समर्पण कर दिया। पुलिस ने बताया कि इनमें से 30 माओवादियों पर 64 लाख रुपए का इनाम था। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के अंतर्गत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि के साथ कौशल विकास प्रशिक्षण सहित अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। छठी अनुसूची के विस्तार और लद्दाख को राज्य का दर्जा देने पर केंद्र के साथ प्रस्तावित वार्ता को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच लेह में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। लेह जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत लेह में पूर्व अनुमति के बिना जुलूस, रैली या मार्च नहीं निकाला जाएगा। वाहनों पर लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित है। 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर भी प्रतिबंध रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल उत्तर प्रदेश के वृंदावन जाएंगी। वृंदावन में अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान राष्ट्रपति श्री बांके बिहारी मंदिर, निधिवन और कुब्जा कृष्ण मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश और राजस्थान का दौरा करेंगे। श्री मोदी ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री राजस्थान में 1,22,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी पीएम कुसुम लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे। प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक डॉक्टर एस एल भैरप्पा का आज दोपहर बंगलुरु में निधन हो गया। डॉक्टर भैरप्पा ने 25 से अधिक उपन्यास लिखे। उन्हें 2023 में पद्म भूषण और 2010 में सरस्वती सम्मान सहित सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर भैरप्पा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को लापता बच्चों का पता लगाने और इससे संबंधित मामलों की निगरानी के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने निर्देश दिया कि प्रत्येक राज्य को पोर्टल के माध्यम से गुमशुदगी की शिकायतों और सूचना के प्रसार के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना चाहिए। बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने आज विधानसभा चुनाव के लिए अपने संयुक्त घोषणा पत्र का पहला भाग अति पिछड़ा न्याय संकल्प जारी किया। इसमें अति पिछड़ा वर्ग के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। संस्कृति मंत्रालय ने औपनिवेशिक विद्रोह के बाद भारत लौटे अवशेष तुरंत रूस को उधार दिए गए शीर्षक वाली एक मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया है। मंत्रालय ने कहा कि पिपरावा रत्नों की आवाजाही के दावे निराधार और गलत हैं। मंत्रालय ने कहा कि रिपोर्ट मंत्रालय की पुष्टि के बिना प्रकाशित की गई है और भ्रामक है। मंत्रालय ने मीडिया से राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर खबरें प्रकाशित करने से पहले तथ्यों की जांच करने का आग्रह किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। भारतीय नौसेना के स्टिल फ्रिगेट INS त्रिकंद ने भूमध्य सागर में तैनाती के दौरान साइप्रस के लिमासोल शहर का दौरा किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 21 तारीख को बंदरगाह और जहाज पर विचार विमर्श, योग और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसी गतिविधियां भी हुईं। सुपर टाइफून रागासा ने ताइवान, हांगकांग, फिलीपींस और दक्षिण चीन में तबाही मचाई है। टाइफून रागासा के कारण ताइवान में 17 लोगों की मौत हो गई और 18 घायल हुए हैं। ये ताइवान के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के साथ तबाही मचा रहा है। फिलीपींस में 4 लोगों की जान गई है और दक्षिणी चीन में जनजीवन ठप हो गया है। दक्षिणी चीन में लगभग 20,00,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एशिया कप T20 क्रिकेट में बांग्लादेश के साथ सुपर 4 मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 11 ओवर में 2 विकेट पर 112 रन बना लिए हैं। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अगर भारत आज के मुकाबले में जीत दर्ज करता है तो बेहतर रन रेट के कारण फाइनल में उसकी जगह पक्की हो जाएगी। कल के सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेट से हरा दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए 95,000 करोड़ रुपए के 6 प्रस्तावों को मंजूरी दी। भारत के जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लगभग 70,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के उत्पादकता आधारित बोनस को मंजूरी दी। देश में स्नातकोत्तर और स्नातक चिकित्सा शिक्षा क्षमता के विस्तार को भी मंजूरी दी गई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 71 माओवादियों ने समर्पण किया। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची के विस्तार की मांग को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद लेह में निषेधाज्ञा लागू। सुपर टाइफून रागासा ने दक्षिण पूर्व एशिया में तबाही मचाई। ताइवान में 17 और फिलीपींस में 4 लोगों की मौत। और पुरुषों के T20 एशिया कप क्रिकेट में दुबई में भारत तथा बांग्लादेश के बीच सुपर 4 का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।